एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों का स्वागत है।
मैं हूं आपका मेजबान और आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जो दर्शन की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम पर रोशनी डालती है। ये किताब एजे एयर की लिखी हुई है, डेविड ह्यूम के विचारों पर।
और मैं हूं आपकी दूसरी साथी मेजबान। देखिए, डेविड ह्यूम पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी, मतलब 250 साल बाद भी, उनके विचारों का गहरा असर है कि हम ज्ञान को, विज्ञान को, नैतिकता को, यहाँ तक कि अपने आप को, अपने मैं को कैसे समझते हैं।
हाँ, और ह्यूम को समझना कोई आसान काम नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो एयर की किताब है ये इसमें हमारी काफ़ी मदद करती है।
एक अच्छा जरिया है।
बिल्कुल, ह्यूम का पूरा दर्शन इस एक बात पर टिका है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो अनुभव से आता है, और इस एक विचार से ही उन्होंने कई पुरानी मान्यताओं की, कह सकते हैं, जड़ें हिला दी।
ना, गहराई से सवाल करना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वैचारिक यात्रा।
हाँ, और इस यात्रा में हमारे गाइड हैं एजे एयर, सर अल्फ्रेड जूल्स एयर, 1910 से 1989 तक, जिन्हें लोग एजे फ्रेडी एयर के नाम से भी जानते हैं। वो 20वीं सदी के ब्रिटेन के एक बहुत ही, मतलब, प्रभावशाली दार्शनिक थे।
अच्छा।
और वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, या जिसे हिंदी में तार्किक प्रत्यक्षवाद कहते हैं, उस आंदोलन के एक बड़े चेहरे थे।
तार्किक प्रत्यक्षवाद, यह सुनने में थोड़ा भारी लगता है, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ?
आसान भाषा में कहें तो तार्किक प्रत्यक्षवादी ये मानते थे कि कोई भी बात तभी मायने रखती है जब या तो उसे आप अनुभव के जरिए जांच सकें,
अच्छा,
या फिर वो तर्क या गणित की तरह परिभाषा से ही सच हो, जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं।
ठीक है।
तो अगर किसी बात को, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है या आत्मा अमर है, इन बातों को अगर अनुभव से साबित नहीं किया जा सकता तो वो उनके लिए दार्शनिक तौर पर, मतलब, बेमतलब थी।
ओके।
एयर की एक किताब थी 1936 में आई, लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक। उसने इन विचारों को बहुत मशहूर किया और उस समय दर्शन की दुनिया में काफी हलचल मचा दी थी।
अच्छा, तो एयर खुद भी अनुभव और तर्क पर बहुत जोर देते थे, इसीलिए शायद वो ह्यूम पर लिखने के लिए इतने सही व्यक्ति थे, क्योंकि ह्यूम भी तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि ज्ञान अनुभव से आता है।
बिल्कुल, यही कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एयर ह्यूम को सिर्फ एक, आप कहिए, ऐतिहासिक शख्सियत की तरह नहीं देखते कि बस उनकी पुरानी बातें पढ़ ली। नहीं, वो ह्यूम में एक साथी दार्शनिक देखते हैं, एक ऐसा विचारक जो उन्हीं सवालों से जूझ रहा था जिनसे एयर खुद भी जूझ रहे थे, कि भाई ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, क्या हम वाकई कुछ भी निश्चित रूप से जान सकते हैं।
हाँ, ये तो बुनियादी सवाल है।
बिल्कुल, और दोनों ही दर्शन में जो गैर जरूरी बातें फैली हुई थीं, जिसे ह्यूम ने मजाक में दार्शनिक कचरा कहा था, उसको साफ करना चाहते थे। तो एयर का ह्यूम के प्रति ये जो नजरिया है ना, वो उनकी किताब को सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं बनाता, बल्कि गहरा और व्यावहारिक बनाता है। वो जैसे ह्यूम के तर्कों को दोबारा जिंदा कर देते हैं हमारे लिए।
तो फिर एयर की इस किताब का निचोड़ क्या है? मतलब वो ह्यूम के बारे में क्या मुख्य बात बताना चाह रहे हैं?
एयर का मुख्य तर्क ये है कि डेविड ह्यूम अपने समय के जो ब्रिटिश अनुभववादी थे, मतलब जो मानते थे कि सारा ज्ञान अनुभव से आता है, उनमें सबसे ज्यादा साहसी और, कह सकते हैं, सुसंगत थे। लगातार एक ही बात पे टिके रहे।
अच्छा।
उन्होंने अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है वाले सिद्धांत को इतनी सख्ती से लागू किया कि दर्शन की कई पुरानी इमारतें, खासकर तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, वो ढह गईं। एयर दिखाते हैं कि ह्यूम ने सिर्फ पुरानी बातों को तोड़ा ही नहीं, बल्कि विज्ञान की नींव पर, नैतिकता की हमारी समझ पर और धार्मिक विश्वासों पर भी ऐसे सवाल खड़े किए जिनका असर आज तक महसूस होता है।
यानी एयर कह रहे हैं कि अगर आप अनुभववाद को वाकई गंभीरता से लें तो आप ह्यूम की तरह बहुत सारे स्थापित विचारों पर शक करने लगेंगे।
हाँ, बिल्कुल, एयर के किताब का एक तरह से यही सवाल है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर भरोसा करें तो हम क्या क्या जानने का दावा कर सकते हैं? और ह्यूम का जवाब चौंकाने वाला है।
क्या जवाब है?
जवाब है बहुत कम। कारण और प्रभाव का नियम जिसे हम मानते हैं, बाहरी दुनिया का अस्तित्व, हमारा अपना मैं, ये सब चीजें जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं, ह्यूम के अनुसार तर्क या सीधे अनुभव से साबित नहीं की जा सकती।
लेकिन अगर ये तर्क या अनुभव से साबित नहीं होती तो हम इन पर इतना यकीन क्यों करते हैं? जैसे सूरज का लुगेगा, ये हम कैसे मान लेते हैं? या ये कुर्सी सच में मेरे सामने है, ये कैसे जानते हैं? ये तो रोजमर्रा की बातें हैं।
हाँ, यहीं पर ह्यूम का वो क्रांतिकारी मोड़ आता है जिसे एयर बहुत अच्छे से समझाते हैं। ह्यूम कहते हैं कि ये विश्वास तर्क से नहीं आते।
तो फिर?
ये आते हैं हमारी आदत से, हमारी मनोवैज्ञानिक बनावट से और हमारी भावनाओं से। हम सूरज को रोज उगते देखते हैं, है ना?
हाँ।
तो हमें आदत हो जाती है उम्मीद करने की कि वो कल भी उगेगा। ये आदत मतलब जिंदगी के लिए जरूरी है, पर ये कोई तार्किक सबूत नहीं है। एयर दिखाते हैं कि ह्यूम ने दर्शन को एक तरह से मानव मन के विज्ञान की ओर मोड़ दिया।
ये तो वाकई सोचने का नजरिया ही बदल देने वाली बात है। तो किताब हमें ह्यूम के इन विचारों की पूरी यात्रा पर ले जाती है, शुरू से आखिर तक।
हाँ, एयर हमें ह्यूम के दर्शन के जो मुख्य पड़ाव है उनसे गुजारते हैं। शुरुआत होती है मन के काम करने के तरीके से। ह्यूम कैसे बताते हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी है वो या तो सीधा ताज़ा अनुभव है, जिसे वो इम्प्रेशन कहते हैं,
इम्प्रेशन,
या फिर उसी अनुभव की धुंधली याद या कल्पना, जिसे वो आइडिया कहते हैं।
अच्छा, इम्प्रेशन और आइडिया।
हाँ, फिर एयर दिखाते हैं कि कैसे ह्यूम इस सरल से दिखने वाले विचार का इस्तेमाल करके बड़े बड़े दार्शनिक सवालों की चीरफाड़ करते हैं। कारण क्या है? क्या दुनिया सचमुच वैसी है जैसी हमें दिखती है? मैं कौन हूँ? सही गलत का फैसला कैसे होता है? एयर ह्यूम के तर्कों को बहुत साफ और कह सकते हैं धारदार तरीके से पेश करते हैं।
चलिए, अब कुछ मुख्य पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत मन और ज्ञान से करते हैं। ह्यूम के ये इम्प्रेशन और आइडिया वाले विचार को एयर कैसे समझाते हैं?
एयर इसे ह्यूम के दर्शन की नींव बताते हैं। ह्यूम कहते हैं कि हमारे मन की सारी सामग्री, जिसे वो परसेप्शन या प्रत्यक्ष बोध कहते हैं, वो दो तरह की होती है। पहला है इम्प्रेशन, यानी एकदम सीधे और जीवंत अनुभव, जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं।
हाँ,
ये एक इम्प्रेशन है। या मान लीजिए चाय का गर्म कप छूना या अचानक तेज गुस्सा आना, ये सब इम्प्रेशंस हैं, बहुत ताजे, बहुत शक्तिशाली।
और दूसरा है आइडिया।
हाँ, दूसरा है आइडिया यानी विचार। ये उन इम्प्रेशंस की धुंधली नकलें हैं जो हम सोचने या याद करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कल पी हुई चाय के स्वाद को याद करें या गुस्से के बारे में सोचें। ये याद या सोच असली अनुभव जितनी तेज नहीं होती, है ना?
ह्यूम का बड़ा दावा, जिसे एयर कॉपी प्रिंसिपल कहते हैं, वो ये है कि हर सरल आइडिया किसी ना किसी पहले आए हुए सरल इम्प्रेशन की कॉपी होता है।
इसका मतलब, कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए सुनहरा पहाड़ का आइडिया। ये दो आइडिया से मिलके बना है, सुनहरा और पहाड़। अब सुनहरा का आइडिया कहाँ से आया? सोने को देखने के इम्प्रेशन से। और पहाड़ का आइडिया पहाड़ देखने के इम्प्रेशन से।
ठीक है,
लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके पीछे कोई इम्प्रेशन ट्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे शायद आत्मा का विचार या ईश्वर या शक्ति का विचार, तो ह्यूम के लिए वो शब्द दार्शनिक रूप से अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं उसका।
अरे,
ये उनका तत्व मीमांसा पर बहुत बड़ा हमला था। एयर दिखाते हैं कि ये ह्यूम का एक बहुत तेज औजार था बेकार की दार्शनिक बातों को काटने के लिए।
और इसी से जुड़ा है ह्यूम का कांटा, ये जो ज्ञान को दो हिस्सों में बांटता है।
बिल्कुल, एयर इसे भी स्पष्ट करते हैं। ह्यूम कहते हैं कि ज्ञान या तो विचारों के आपसी संबंध के बारे में होता है, जैसे गणित 2+2=4, या तर्क की बातें, जैसे सभी अविवाहित पुरुष कुंवारे हैं।
हाँ, ये तो परिभाषा से ही सच है।
सेम, ये बातें निश्चित होती हैं, इनमें कोई शक नहीं हो सकता, लेकिन ये दुनिया के बारे में कुछ नया नहीं बताती। ये बस शब्दों या विचारों के आपसी रिश्ते हैं।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है तथ्यों के मामले, मैटर्स ऑफ फैक्ट, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये बातें अनुभव पर आधारित होती हैं, ये दुनिया के बारे में कुछ बताती हैं।
हाँ,
लेकिन ये कभी भी 100% निश्चित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका उल्टा सोचना संभव होता है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली राजधानी ना हो या पानी 100 डिग्री पर ना उबले।
अच्छा।
ह्यूम के अनुसार इन दो के अलावा ज्ञान का कोई तीसरा रास्ता नहीं है, या तो बात परिभाषा से सच है या अनुभव पर आधारित है और अनिश्चित है, बस।
ठीक है, तो ज्ञान या तो परिभाषा से सच है या अनुभव पर आधारित। अब आते हैं उस विचार पर जिसने शायद सबसे ज्यादा हलचल मचाई, कारण और प्रभाव, कॉजालिटी पर ह्यूम के विचार। इसे कैसे पेश करते हैं?
एयर इस पे काफी जोर देती हैं क्योंकि ये ह्यूम के दर्शन का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। हम आमतौर पर मानते हैं कि जब एक चीज ए दूसरी चीज बी का कारण बनती है तो उनके बीच कोई जरूरी रिश्ता, नेसेसरी कनेक्शन होता है, कोई शक्ति होती है जो ए से बी को पैदा करती है। जैसे हम कहते हैं आग लगने से धुआं उठता है।
हाँ, ये तो रोज देखते हैं।
ह्यूम पूछते हैं ये जरूरी रिश्ता या ये शक्ति का आइडिया किस इंप्रेशन से आता है? क्या हमने कभी दो घटनाओं के बीच इस छिपे हुए कनेक्शन को सीधे अनुभव किया है, देखा है, छुआ है?
शायद नहीं। हम तो बस देखते हैं कि आग जलती है और फिर थोड़ी देर में धुआं उठता है। बार बार ऐसा ही होता है।
एग्जैक्टली, यही ह्यूम का पॉइंट है। एयर समझाते कि ह्यूम कहते कि हम केवल नियत संयोग देखते हैं, यानी एक घटना के बाद दूसरी घटना लगातार होती है, हम उनके बीच का वो जरूरी कनेक्शन नहीं देखते।
अच्छा,
कहां से है कि ए बी का कारण है?
तो ह्यूम इसका क्या जवाब देते हैं अगर ये तर्क या अनुभव से नहीं आता?
ह्यूम का जवाब मनोवैज्ञानिक है, जिसे एयर बहुत स्पष्ट करती हैं। ये विश्वास हमारी आदत, कस्टम से आता है। बार बार आग के बाद धुआं देखने से हमारे मन में एक उम्मीद बन जाती है, एक एक्सपेक्टेशन।
अच्छा,
अगली बार जब हम आग देखते हैं तो हमारा मन अपने आप धुएं का विचार पैदा कर देता है। यही अंदरूनी एहसास, ये जो उम्मीद है, यही हमारे जरूरी कनेक्शन के आइडिया का स्रोत है। तो कारण कार्य का नियम दुनिया में बाहर मौजूद कोई चीज नहीं, बल्कि हमारे मन की एक आदत है जिसे हम दुनिया पर ठोप देते हैं।
बाप रे, मतलब विज्ञान के नियम भी सिर्फ हमारी आदतें हैं, कोई परम सत्य नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है और इसी से जुड़ा है आगमन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन।
हाँ, ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। बिल्कुल, हमारा सारा वैज्ञानिक ज्ञान और रोजमर्रा का जीवन भी इस भरोसे पर टिका है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
यानी क्योंकि सूरज रोज पूरब से उगा है तो हम मान लेते हैं कि कल भी उगेगा। ह्यूम पूछते हैं इस भरोसे का आधार क्या है? क्या ये तर्क से साबित होता है? नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सोचना संभव है कि सूरज कल ना उगे।
ठीक है।
क्या ये अनुभव से साबित होता है? नहीं, क्योंकि आप अतीत के अनुभव का इस्तेमाल करके भविष्य के अनुभव को सही ठहरा रहे हैं। ये तो गोलमोल तर्क हो गया, सर्कुलर रीजनिंग।
हाँ, ये तो बात सही है।
तो ह्यूम का निष्कर्ष, जिसे ए रेखांकित करती हैं, ये है कि आगमन, इंडक्शन पर हमारा भरोसा भी एक जरूरी मनोवैज्ञानिक आदत है, जीने के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसका कोई पक्का तार्किक या अनुभव जन्य आधार नहीं है।
ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे ज्ञान कहते हैं उसकी नींव कितनी कितनी कच्ची है। अब ह्यूम इसी शक को बाहरी दुनिया और खुद मैं पर भी लागू करते हैं। एयर इसे कैसे बताते हैं?
हाँ, ह्यूम अपनी अनुभववादी कसौटी को इन बुनियादी विश्वासों पर भी लगाते हैं बिना रुके। पहले बाहरी दुनिया, हम कैसे मान लें कि हमारे अनुभवों जैसे रंग, आवाज, गंध के पीछे सचमुच कोई ठोस दुनिया मौजूद है जो हमारे अनुभव न करने पर भी वैसी ही बनी रहती है?
ये भी एक सवाल है।
ह्यूम कहते हैं हम इसे साबित नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ अपने इम्प्रेशन और आइडिया ही मिलते हैं, है ना? एक स्थिर बाहरी दुनिया में हमारा विश्वास इसलिए बनता है क्योंकि हमारे अनुभव अक्सर स्थिर, कॉन्स्टेंट और सुसंगत, कोहेरेंट होते हैं। मतलब चीजें अचानक गायब नहीं हो जाती या बेतरतीब ढंग से नहीं बदलती।
हाँ।
हमारी कल्पना इन अनुभवों को जोड़कर एक स्थायी वस्तु का विचार बना लेती है। एयर कहते हैं कि ह्यूम के अनुसार ये उपयोगी है, जीने के लिए जरूरी है, पर दार्शनिक रूप से इसे साबित नहीं किया जा सकता।
और मैं के बारे में, वो चीज जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, जो जन्म से मृत्यु तक एक जैसी रहती है, उसका क्या?
यहाँ भी वही सवाल पूछते हैं। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, क्या आपको कोई एक स्थिर मैं या आत्मा का इम्प्रेशन मिलता है?
पता नहीं, शायद नहीं। बस विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं।
बिल्कुल, ह्यूम का जवाब यही है, नहीं। हमें सिर्फ अलग अलग विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं की एक तेज धारा मिलती है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी कोई सोच, कभी कोई याद। इसलिए ह्यूम का वो मशहूर निष्कर्ष, जिसे एयर उद्धृत करती हैं,
स्वविभिन्न प्रत्यक्ष बोधों का एक बंडल या संग्रह मात्र है, जो अकल्पनीय तेजी से एक दूसरे के बाद आते हैं और निरंतर प्रवाह और गति में रहते हैं।
बंडल ऑफ परसेप्शंस, एक स्थायी मैं का विचार भी हमारी कल्पना और याददाश्त की उपज है, जो अनुभवों की इस धारा को एक कहानी में पिरो देती है, ताकि हमें लगे कि हम एक ही व्यक्ति हैं।
मतलब कोई स्थायी मैं नहीं, सिर्फ विचारों और भावनाओं का एक लगातार बदलता हुआ झुंड। ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग लगता है। अब आते हैं नैतिकता पर। यहाँ ह्यूम का वो मशहूर कथन है, तर्क जुनून का गुलाम है। ये इसे कैसे समझाते हैं?
एयर इसे ह्यूम के नैतिक दर्शन की कुंजी मानती हैं। ह्यूम का मानना था कि तर्क हमें सिर्फ ये बता सकता है कि किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए।
वो रास्ता बता सकता है।
अच्छा, लेकिन वो लक्ष्य क्या होना चाहिए ये तर्क तय नहीं कर सकता। हमारे लक्ष्य, हमारी इच्छाएं, हमारे मूल्य, ये सब हमारी भावनाओं, पैशंस और सेंटिमेंट से आते हैं। ह्यूम इन्हें पैशन कहते हैं।
उदाहरण के लिए,
जैसे अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो तर्क ये बता सकता है कि मदद करने का सबसे असरदार तरीका क्या है, पैसे देना या समय देना या कुछ और। लेकिन मदद करने की जो इच्छा है, जो प्रेरणा है, वो खुद एक भावना है, तर्क नहीं। इसीलिए ह्यूम कहते हैं तर्क जुनून का गुलाम है और होना भी चाहिए। तर्क का काम है भावनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना।
तो फिर सही गलत का फैसला कैसे होता है अगर तर्क नहीं बताता तो?
ह्यूम का जवाब फिर से भावनाओं में ही है। उनका भावुकतावादी सिद्धांत यानी सेंटिमेंटलिस्ट थ्योरी कहता है कि जब हम किसी काम को बुरा या अच्छा कहते हैं तो हम उस काम के बारे में कोई तथ्य नहीं बता रहे होते।
तो क्या कर रहे होते हैं?
हम उसके प्रति अपनी अस्वीकृति या अनुमोदन की भावना व्यक्त कर रहे होते हैं। ये भावना अक्सर सहानुभूति यानी सिंपथी पर आधारित होती है, यानी दूसरों की खुशी या दुख को महसूस करने की हमारी क्षमता पर।
अच्छा।
जो चीजें हमें या दूसरों को खुशी देती हैं या समाज के लिए उपयोगी होती हैं, उन्हें देखकर हमारे अंदर अनुमोदन की मतलब तारीफ की भावना पैदा होती है और हम उन्हें अच्छा कहते हैं। और जो दुख देती हैं, ये नुकसान पहुंचाती हैं, उनके प्रति नापसंदीगी भावना आती है और हम उन्हें बुरा कहते हैं।
और यहीं पर है चाहिए की समस्या भी आती है ना, कि हम तथ्यों से मूल्यों पर कैसे पहुंच जाते हैं।
हाँ, एयर इसे ह्यूम की एक और बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक खोज बताती हैं। ह्यूम ने देखा कि दार्शनिक अक्सर दुनिया कैसी है, व्हाट इज द केस, यानी तथ्यात्मक बयानों से सीधे इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी द केस, यानी नैतिक आदेशों पर,
बिना किसी ब्रिज के।
हाँ, बिना किसी तार्किक ब्रिज के। ह्यूम ने कहा कि इन दोनों के बीच एक तार्किक खाई है। आप सिर्फ तथ्यों को देखकर ये तय नहीं कर सकते कि क्या नैतिक रूप से सही है या गलत। तथ्यों से मूल्यों तक पहुंचने के लिए आपको भावनाओं और मूल्यों को बीच में लाना ही होगा। आप है से चाहिए पर छलांग नहीं लगा सकते।
ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। ह्यूम ने धर्म और राजनीति पर भी अपने विचार रखे थे। एयर उनके बारे में क्या बताती है?
हाँ, बहुत संक्षेप में कहूँ तो धर्म के मामले में एयर ह्यूम के चमत्कारों के खिलाफ दिए गए तर्क को रेखांकित करती हैं। ह्यूम का कहना था कि चमत्कार की परिभाषा ही है प्रकृति के नियम का उल्लंघन, और प्रकृति के नियम हमारे पास मौजूद सबसे मजबूत अनुभवजन्य सबूत पर आधारित है।
सही।
किसी चमत्कार की गवाही पर यकीन करने के लिए उस गवाही का झूठा होना खुद उस चमत्कार के होने से भी ज्यादा अविश्वसनीय होना चाहिए। इसलिए चमत्कार पर यकीन करना तर्कसंगत नहीं है।
ये तो काफी तार्किक लगता है। और राजनीति?
राजनीति में ह्यूम काल्पनिक सिद्धांतों जैसे कि सामाजिक समझौता या प्राकृतिक अधिकार को ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि वो अनुभव से जुड़े नहीं लगते उन्हें। वो व्यावहारिकता, उपयोगिता और परंपरा पर जोर देते हैं। सरकारें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे समाज में व्यवस्था बनाए रखने में उपयोगी हैं। वो कृत्रिम चीजें हैं जिन्हें हमने अपनी जरूरत के लिए बनाया है।
अच्छा, तो अगर हम मेयर की किताब से निकले मुख्य विषयों को समेटें तो वो क्या होंगे? एक तरह से निचोड़ क्या है?
पहला, मुझे लगता है, अनुभववाद की शक्ति और उसकी सीमाएं। ह्यूम दिखाते हैं कि अगर हम केवल अनुभव पर टिके रहें तो हम कितना कम निश्चित रूप से जान सकते हैं। ये एक तरह का बौद्धिक झटका है ना?
हाँ, बिल्कुल।
दूसरा, तर्क की भूमिका सीमित है। हमारे ज्यादातर विश्वास, खासकर कारण कार्य और नैतिकता जैसे जो बुनियादी विश्वास है, वो तर्क से ज्यादा आदत और भावना पर टिके हैं। ह्यूम हमें दिखाते हैं कि हम जितने तार्किक प्राणी खुद को समझते हैं, शायद उतने हैं नहीं।
ये बात तो सोचने वाली है। तीसरा,
मानवीय विश्वासों की मनोवैज्ञानिक जड़ें। ह्यूम दर्शन को मनोविज्ञान के बहुत करीब ले आते हैं। वो बताते हैं कि हमारे विश्वास बनते कैसे हैं, हमारी आदतें कैसे काम करती हैं, सहानुभूति हमें कैसे जोड़ती है। वो एक तरह से मन का विज्ञान बना रहे थे।
चौथा,
तथ्यों और मूल्यों का अंतर। वो है चाहिए वाली बात, है से चाहिए पर सीधे नहीं कूद सकते। ये आज भी नैतिक बहसों को समझने में बहुत मददगार है। हम अक्सर देखते हैं लोग कैसे अपनी पसंद नापसंद को तथ्यों की तरह पेश करते हैं, है ना? बिल्कुल। और पांचवा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है संयमित संशयवाद, मिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म। ह्यूम हमें पूरी तरह निराशावादी या निष्क्रिय नहीं बनाते। वो कहते हैं कि हमें ज्ञान की सीमाओं को पहचानना चाहिए, लेकिन साथ ही उन आदतों और भावनाओं पर भरोसा सीखना चाहिए जो हमें जीने में मदद करती हैं। हमें पूरी निश्चितता की तलाश छोड़कर सबूतों के आधार पर विनम्रता से अपने विश्वास बनाने चाहिए।
एयर की किताब में ह्यूम के कुछ ऐसे विचार या पंक्तियां भी होंगी जो एकदम दिमाग में अटक जाती हैं। कुछ यादगार कोट्स?
हाँ, कई हैं। एक तो वही, तर्क जुनून का गुलाम है और होना भी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे काम और फैसलों के पीछे भावनाएं असली ड्राइवर हैं, तर्क तो बस रास्ता दिखाता है।
हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। दूसरा, स्व के बारे में। स्व विभिन्न प्रत्यक्ष बोधों का एक बंडल या संग्रह मात्र है जो निरंतर प्रवाह और गति में रहते हैं। ये हमारे स्थायी मैं के विचार को चुनौती देता है और हमें एक प्रक्रिया के रूप में देखने को कहता है, कोई स्थिर चीज नहीं।
और तीसरा, आदत के बारे में। रिवाज, कस्टम, तब मानव जीवन का महान मार्गदर्शक है। ये बताता है कि कैसे आदतें जिन्हें हम अक्सर कम आंकते हैं हमारे जीवन और समाज का आधार है। कारण कार्य का विश्वास भी इसी से आता है।
और एक और जो मुझे बहुत व्यवहारिक लगता है, शायद चमत्कारों वाले हिस्से से, एक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए अपने विश्वास को सबूत के अनुपात में रखता है। यानी जितनी मजबूती से आप किसी बात पर यकीन करते हैं उतना ही मजबूत आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। कम सबूत पर कम यकीन, ज्यादा सबूत पर ज्यादा यकीन।
बिल्कुल सही। ये सारे विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, है ना? इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं?
पहला तो ये कि सवाल पूछने की आदत डालें। जब भी कोई दावा सुने, चाहे वो न्यूज में हो, विज्ञापन में, या दोस्तों से ही क्यों ना हो, पूछें, इसका सबूत क्या है? ये किस अनुभव या तर्क पर आधारित है? ये हमें गलत जानकारी, फेक न्यूज वगैरह से बचने में बहुत मदद करेगा।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। दूसरा, मुझे लगता है लोगों को समझने में मदद मिलती है जब हम जानते हैं कि फैसले सिर्फ तर्क से नहीं भावनाओं का भी बड़ा हाथ होता है, तो हम दूसरों के नजरिए को शायद बेहतर समझ सकते हैं।
सही कहा। बहस करते समय सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाओं और मूल्यों पर भी ध्यान दे सकते हैं।
बिल्कुल। तीसरा, बौद्धिक विनम्रता आती है। ये मानना कि हम सब कुछ निश्चित रूप से नहीं जान सकते और हमारे कई गहरे विश्वास भी आदत या भावना पर आधारित है, हमें अपने विचारों को लेकर कम अड़ियल बनाता है। हम दूसरों को सुनने और शायद उनसे सीखने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं।
चौथा, नैतिक बहसों में स्पष्टता आती है। जब हम हैं और चाहिए का फर्क समझते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि कहाँ तथ्यों की बात हो रही है और कहाँ मूल्यों या भावनाओं की। इससे बहसें शायद ज्यादा सार्थक हो सकती हैं, कम टकराव वाली।
हाँ, ये भी एक अच्छी बात है।
तो अंत में एयर की इस किताब से या ह्यूम के विचारों से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा? क्या चीज सबसे ज्यादा असर कर गई?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक है ह्यूम का संयमित संशयवाद। पूरी तरह शक करके निष्क्रिय हो जाना भी ठीक नहीं, और बिना सोचे समझे हर बात मान लेना भी खतरनाक है। ह्यूम हमें वो बीच का रास्ता दिखाते हैं। ज्ञान की सीमाओं को स्वीकारो, सबूतों को ध्यान से देखो, अपनी आदतों और भावनाओं को समझो और विनम्रता के साथ आगे बढ़ो। ये अनिश्चितता भरी दुनिया में जीने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, परिपक्व तरीका लगता है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि कैसे ह्यूम ने इतने पहले ही, मतलब 18वीं सदी में, मानव मन की गहराइयों में झांक लिया था। उनका ये कहना कि कारण कार्य या स्व हमारे मन की उपज है, ये आज के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की खोजों से कितना मिलता जुलता लगता है। एयर की किताब इस मुश्किल दार्शनिक को बहुत साफ और जिंदा तरीके से पेश करती है, ये दिखाते हुए कि ह्यूम के सवाल आज भी हमारे लिए कितने जरूरी हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।